इब्राहिम अब्दुल करीम।
मैं इब्राहिम अब्दुल करीम हूँ, मैं 31 साल का हूँ। मेरा ताल्लुक मगरबी लंदन से है। मैं मगरबी लंदन में पैदा हुआ और वहीं मैंने परवरिश पाई है। मेरे 4 भाई और 2 बहनें हैं, मैं उनमें सबसे बड़ा हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो मेरे वालिद ने घर छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया और मेरे वालिदा ने हमारी परवरिश की। 15 बरस की उम्र में मुझे घर से निकाल लिया गया और मैं बेघर हो गया। उसके बाद मैं 4 साल तक सड़कों पर सोता रहा। मैं गद्दे बिछाकर या कुर्सियों पर या खाली इमारतों में सोता था। मेरी ज़िंदगी का यही दौर था। 15 से 20 साल के दरमियान जब मैं बेघर था, इसी दौरान मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं स्कूल में एक बुरा तालिब इल्म था, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता था। स्कूल में मुश्किलात खड़ी करना, घर में मसाइल पैदा करना, मैं समझता हूँ ये सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि मेरी वालिदा आखिरकार तंग आ गईं। मेरी वालिदा अकेली हमें पालती थी। वो कोशिश करती थी कि अपने बेटों को एक नेक आदमी बनाए, और ये काम खास तौर पर एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम है। एक नौजवान लड़के को यकीनन अपने बाप की सरपरस्ती की ज़रूरत होती है, और मैं इससे महरूम हो चुका था। मुझे यकीन है कि ये संगीन जिम्मेदारी मेरी वालिदा के कंधों पर आ गई। फिर उन्होंने मुझे 15 साल की उम्र में घर से निकाल कर मुझे कम उम्र में ही अपना ख्याल खुद रखने पर मजबूर कर दिया। घर से निकाल दिए जाने के बाद मेरे सामने बड़ी मुश्किलात आईं। खाने पीने सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, मेरे पास कपड़े तक नहीं थे। उसके बाद मैं घर से आवारगी के मसाइल में गिरफ्तार हुआ। मेरे पास कोई जगह नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि हर जानवर जो रोए ज़मीन पर होता है, उसके पास अपना सर छुपाने की कोई जगह होती है। परिंदों के घोंसले होते हैं, शेर की अपनी कछार होती है, कछुए का खोल होता है, लेकिन मैं जो एक नौजवान हूँ, मेरे सर पर कोई छत नहीं है। मुझे अपने वालिदैन की सरपरस्ती भी हासिल नहीं है। ये बातें एक लड़के के लिए सख्त हो सकती हैं। मेरे ख्याल में मैं जब 16 साल का था तो मैं एक दुकान के सामने से गुजरा। वहाँ एक मुसलमान शख्स थे जिनका नाम सुलेमान था, जो इत्र बेचते थे। मेरे दुकान में अंदर जाने से पहले मेरी किसी से लड़ाई हुई थी और दोनों आँखों के निचले हिस्से काले पड़ गए थे। मैं बहुत थका हुआ और परेशान था। अलबत्ता आप इस आदमी की हालत देखते जिससे मेरी लड़ाई हुई थी तो आपको पता चलता। के सामने से गुजर रहा था, उन्होंने मुझे एक बहुत रूमाना बात कह दी जिसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की। उन्होंने ऐसी बात कही जिसका मेरे चेहरे के काले पड़ने से ताल्लुक था, लेकिन यह बात उन्होंने बहुत ज़्यादा जुमाना और असरानंदाज तरीके से कही। मेरी उनसे दोस्ती हुई और अक्सर जब मैं दुकान के सामने से गुजरता था तो मैं वहाँ रुक जाता था और हम एक दूसरे से बहस मुबहसा और गुफ्तगू करते थे। दुकान में हमेशा कुछ और मुसलमान भाई भी होते थे। ये इस्लाम के बारे में भी मेरा पहला तजुर्बा था। कुछ बूढ़े और सिंदर सीधा मुसलमान एक लंबे अरसे से मुसलमान थे और अच्छी खासी मालूमात भी उन्हें हासिल थी। जब भी मैं वहाँ से गुजरता तो मैं वहाँ रुक जाता था और 15-20 मिनट तक हम एक दूसरे के साथ इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करते थे। फिर मैं वहाँ से चला जाता था और मुझसे जो बातें वो कहते थे उनके बारे में मैं सोचता था। मैं हमेशा सवाल के साथ उनके पास से वापस जाता था क्योंकि मुझमें जानने की तड़प थी और मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था। मैं एक ऐसे ख़ानदान में पला बढ़ा था जो हमेशा से ईसाई रहा है। मेरे वालदेन जमैका से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत से ईसाई ख़ानदानों के मानंद हम भी ईसाई इसारत रखने वाले लोग थे। हम हर इतवार को गिरजाघर जाते थे। इसी तरह मैं इतवार के मजहबी स्कूलों में जाता था और मैंने इंजील को भी पढ़ रखा था। दरहकीकत मैंने इसको खूब पढ़ा है। मैंने किताब इंजील को छान मारा है। एक ने परवरिश पाने हर इतवार को गिरजाघर या स्कूल जाने और इंजील को जुज़ियात के साथ सीखने की वजह से मैं इस्लाम को बेहतर तौर पर समझने के काबिल हुआ, और अगर मैं इन मरहलों से न गुजर चुका होता तो ये भी मुमकिन नहीं था। दीन के बारे में लोग जो गलतियां करते हैं उनमें से एक यह है कि वो अदियान का एक दूसरे के साथ मुआजना करते हैं। मसलन ये कि तुम मुसलमान हो, मैं ईसाई हूँ। لیکن اگر دونوں کو سمجھ لیں تو اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ عیسائیت اور اسلام دونوں ایک ہی سفر کا تسلسل ہیں، بالکل ایک قسط وار. چنانچہ 16-17 سال کی عمر تک میں جس عیسائی پس منظر کے ساتھ پروان چڑھا تھا اور جس طرح میں نے عیسائیت کے بارے میں پڑھا تھا، وہ اس کے علاوہ مسلمانوں سے میرا رابطہ اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر آزادانہ طور پر بیٹھ کر بات چیت کرنا اور معلومات حاصل کرنا، یہ سب اس بات کا باعث بنا کہ میں اسلام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکوں. 7 نومبر 1997 کی تاریخ تھی، میں اس دن کو نہیں بھول سکتا ہوں. اس دن میں نے کہا تھا کہ میں شہادتین پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہاں ایک بھائی تھے جن کا نام موسیٰ تھا، وہ مجھے ایک مسجد میں لے گئے. جمعہ کا دن تھا، لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے میں مسجد کبھی نہیں گیا تھا، اس لیے میں بہت گھبرایا ہوا تھا. یہ میرے لیے چونکا دینے والی بات تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہونے والا ہے. لیکن جب ہم ایک بار پھر اسلام میں عقلانیت اور اس کے پس پردہ منطق کی بات کرتے ہیں تو مسلمان ہونے کا طریقہ بھی سادہ ہے، صرف اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک خدا اور اس خدا کا کوئی شریک یا بہن بھائی اور بیٹا نہیں ہے، اور یہی شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور میں نے کبھی مڑ کر اپنے پیچھے نہیں دیکھا، میرے اندر کامل ہونے کا احساس تھا، سب کچھ میرے لیے شفاف ہو چکا تھا، گویا میری آنکھیں کھل چکی تھیں اور مجھے چیزوں میں فرق نظر آ رہا تھا. میں اب دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں کامل ہونے کا احساس کر رہا تھا، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مصیبت میں مبتلا ہیں، اور اکثر اوقات میں ان کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی خدا نہیں ہے. جتنا آپ زیادہ دیں گے اتنا زیادہ حاصل کریں گے. تم دوسروں کے لیے جو نیکی کا کام کرو گے اس کا پھل آخرت میں تمہیں ہی ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بڑی تبدیلی ہے جو اسلام نے میری زندگی میں پیدا کی ہے. اگر میں ایسے شخص سے کوئی بات کہنا چاہوں جو اسلام سے لگاؤ رکھتا ہو تو میں یہ بات اس سے کہوں گا، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے.